मेरे अपने अत्यंत प्रिय युवा साथियों नमस्कार। आज 24 नवंबर 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक उस नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनका नाम है कुणाल प्रियम, आप मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। तो कुणाल, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, एक विशेष सूचना है और सूचना यह है कि जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसका जो थर्ड पेपर है, जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में, उसके खुलासे के बारे में कि सिलेबस क्या है और आप सबको इसमें से कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स पर जोर देना चाहिए, खासकर सिलेबस का यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा विस्तार रूप दिया गया है और इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया है जो YouTube पर अवेलेबल करा दिया गया है। जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर जिसमें आपका इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और ये सारे साइंस, सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। मित्रों, मैं आपको इससे पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं, बता चुका हूं कि सिविल सर्विस का जो सिलेबस है ठीक है वो विस्तार से दिया हुआ है लेकिन उसमें बिटवीन द लाइंस काफी कुछ गुंजाइश होती है जो आपको सबको बताई जानी चाहिए। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर का मैं इससे पहले प्रोवाइड कर चुका हूं और अब मैंने थर्ड पेपर का आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो मेरा व्यक्तिगत सजेशन है कि प्लीज आप सब उसे ध्यान से सुने, ध्यान से समझने की कोशिश करें और केवल एक ही बार नहीं बल्कि उसे बार बार देखें। उसे आप यूं समझ लीजिए कि ऑडियो फॉर्म में सिलेबस है, आपके पास रिटर्न फॉर्म में तो ऑलरेडी होगा ही और उसे आप समय समय पर देखते भी रहते होंगे, कंसल्ट भी करते रहते होंगे, करना भी चाहिए। तो इसे आप उसका एक ऑडियो फॉर्म समझ लें, एक्सप्लेनेटरी फॉर्म भी समझ लें कि उसमें उसका विस्तार से बताया गया है, समझाया गया है, ताकि समय समय पर आप उसे देख सकें, सुन सकें, समझ सकें और उसी के अनुकूल अपनी तैयारी भी कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये ऑडियो फॉर्म आपके पास परमानेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अब आज के उन सूचनाओं पर जो मैं अक्सर हर फ्राइडे को आप लोगों को देता हूं। कल सैटरडे संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है लेकिन कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, अखबारों की जो कटिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी और साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र के दो दो आर्टिकल मिलेंगे, दो योजना के, दो कुरुक्षेत्र के, जिनमें से दो हिंदी में होंगे और दो इंग्लिश में होंगे। इसके साथ ही साथ आप लोगों को वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, साप्ताहिक प्रश्न जो मेंस के एग्जाम के पैटर्न पर होता है वह आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और इसके साथ ही साथ हमारे सिक्स्थ और सेवन्थ बैच के जो स्टूडेंट हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी भेजा जाएगा। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी। मुख्य विषय के रूप में दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जिसे CSR कहते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूं कह लीजिए कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, इस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ी सी छोटी छोटी जो दूसरी खबरें हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। कल के न्यूज में आपने सुना है मित्रों, एक नाम सुना आपने, उमंग, प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया, उमंग। सिविल सर्विस में कभी कभी इस तरह के प्रश्न चूंकि पूछे जाने लगे हैं पिछले दो साल से, स्पेशली इस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। बेसिकली ये मोबाइल ऐप है और मोबाइल ऐप ये इस तरह का, जैसे भारत सरकार के कई ऐप्स हैं, अलग अलग ऐप्स हैं, तो उसका एक फोरम है, एक केंद्र है समझ लीजिए कि जिसमें आपको ढेर सारे ऐप एक जगह मिल जाएंगे, वह है उमंग, एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है भारत सरकार के ऐप्स का। ये आपको बस थोड़ा सा मालूम होना चाहिए और इतना ही सफिशियंट है, इसके लिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत, इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो एक बड़ी खबर है, मैं समझता हूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है सिविल सर्विस की दृष्टि से, प्री के लिहाज से, और वो ये है कि भारत सरकार ने वन अधिनियम में एक अभी परिवर्तन किया है, वन अधिनियम में, है ना। और वन अधिनियम के तहत उन्होंने पेड़ की परिभाषा में से बांस को निकाल दिया है। बांस जिसे इंग्लिश में हम बैम्बू कहते हैं, उसको निकाल दिया है। देखिए कारण क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अब भारत सरकार के इस अध्ययन कानून के तहत पेड़, चाहे वो आपकी अपनी जमीन पर ही क्यों ना उगा हुआ हो, बिना सरकार की अनुमति के आप काट नहीं सकते। सार्वजनिक पेड़ को तो काटने का सवाल ही नहीं उठता है कि आप जंगल से पेड़ काट सकें या सड़क पर है तो पेड़ काट सकें। यहां तक कि आप अपनी भी जमीन पर अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो उसे काटने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये खासकर पर्यावरण संरक्षण के तहत इसकी व्यवस्था की गई है, और भी दूसरे कारण है। तो उसमें होता यह था कि जैसे बांस एक बहुत ही सामान्य सी फसल है, आप फसल क्या कहेंगे, मतलब वृक्ष है, वृक्ष कह लीजिए, यानी कि बड़े आपको बंजर जमीन पर भी हो जाएगी, कम उपजाऊ जमीन पर भी हो जाएगी, उसके लिए कोई बहुत जल पानी की भी जरूरत नहीं होती। तो अक्सर क्या होता है कि किसानों की खेत के बाड़ों पर या ऐसी जो जमीन पड़ी हुई है वहां बांस उगता रहता था। अब सवाल यह कि अगर उसे किसान काटता है तो उसकी उसे परमिशन लेनी पड़ती थी, प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी, और अब उस अनुमति के चक्कर में वो घूम रहा है। तो इसका एक दुष्प्रभाव तो यह भी होता था कि फिर किसान उसके लिए बहुत प्रेरित नहीं होते कि भाई बांस चलो हम उगाएं, क्योंकि उनको अगर थोड़ी सी भी जगह है, क्योंकि उनको मालूम है कि फिर वो चक्कर काटो। तो अब चूंकि बांस को पेड़ की श्रेणी से निकाल दिया गया है, पेड़ की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है, तो अब उन्हें ये अनुमति मिल गई है कि वो पेड़ को काट सकें, यानी कि अब उन्हें उन बांस को काटने के लिए, पेड़ मतलब मैंने पेड़ कह दिया, अब बांस को काटने के लिए उन्हें प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर वो अपने स्टेट में उसे कहीं भी ले जा सकेंगे, ला सकेंगे, ले जा सकेंगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। कभी कभी प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली आपका ध्यान इस ओर दिलाया है, और ये कल की न्यूज में भी था। दोस्तों एक खबर थी अध्यादेश को लेकर, है ना, राष्ट्रपति जी ने एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका इंसॉल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड, जिस पर अभी संसद अधिवेशन में, अगले अधिवेशन में बिल भी आने की बात हो रही कि उसमें वो कुछ संशोधन करेंगे, एक अध्यादेश पारित किया गया है। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि अभी अध्यादेश है, बिल जब जैसे ही एक्ट बन जाएगा तो फिर ये अध्यादेश ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो उस समय हो सकता है कि हम लोग और बातें करें। आप अक्सर ये सुनते हैं कि बैंकों का लोगों ने कर्जा लिया और वो कर्जा वापस नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि बैंकों को संभालने के लिए कैसे भारत सरकार को 2,00,000 करोड़ रुपए बैंकों में डालने पड़े हैं, और ये 2,00,000 करोड़ किसके हैं, हम आप देश की जनता के ही हैं। बैंक नुकसान में जा रहे हैं और हमारा पैसा बैंकों को दिया जा रहा है उस नुकसान की भरपाई के लिए। ये बैंक नुकसान में क्यों जा रहे हैं, उसका कारण यह है कि बैंकों से जिन लोगों ने कर्जा लिया है वो कर्जा नहीं लौटा रहे हैं, और न लौटाने वालों में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। आप ये देख लीजिए कि लगभग ये माना जा रहा है कि बैंकों में लगभग 9,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने दिया है जो जिनके वापस आने की उम्मीद नहीं है, 9,50,000 करोड़ के करीब, और इसमें से 2,50,000 करोड़ रुपए केवल 12 बड़ी कंपनियों के पास हैं जो नहीं लौटा रहे हैं। विजय माल्या भी उनमें से एक है, जिनका नाम आप लगातार न्यूज में सुन रहे होंगे, जो अभी लंदन चले गए हैं। तो अब होता क्या है कि ये लोग फिर बदमाशी करते हैं। बदमाशी क्या करते हैं कि जैसे अब कर्जे में फंसे हुए हैं तो सरकार उनकी बैंक उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देगी, ठीक है। अब उन्होंने अपने को दिवालिया घोषित कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो गई, तो पता लगा कि वो पिछले दरवाजे से अपनी ही प्रॉपर्टी को सस्ती कीमत पर खरीद रहे हैं, अपनी ही प्रॉपर्टी को सस्ती कीमत पर खरीद रहे हैं। तो यह उनकी एक चाल होती है। तो अब इस अध्यादेश के जरिए वो ये व्यवस्था कर दी गई है कि वे अपनी ही प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकेंगे। बस एक सिंपल सा, केवल आप ये बात, सिंपल सी बात को समझ लीजिए, राइट। एक जो और खबर थी मित्रों, वो आपने सुनी होगी कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक समझौता हुआ है, और उस समझौते के तहत उम्मीद की जा रही है कि 3-4 महीने के अंदर जो रोहिंग्या शरणार्थी है वो म्यांमार लौट जाएंगे। हालांकि ये समझौता बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में हुआ, लेकिन डेफिनेटली इसका भारत पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ना ही है, क्योंकि आप पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं कि जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं वो भारत के लिए भी एक समस्या बने हुए हैं और इसको लेकर के एक बहस सी भी शुरू हो गई है। तो इस लिहाज से इस समझौते को भारत भी वेलकम कर रहा है। बस थोड़ी सी आपकी जानकारी इस बात को लेकर होनी चाहिए। मित्रों आइए अब मैं आता हूं सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। मैंने इस विषय को क्यों चुना? आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि जो भारतीय एयरटेल हैं, एयरटेल के जो मालिक हैं सुनील भारती, उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए इसी के तहत मतलब एक सामाजिक दान देने की घोषणा की है कि मैं समाज में लगाऊंगा। ठीक इससे कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि जो नंदन नीलकेनी जी हैं, जो आधार के हमारे चेयरमैन भी रहे हैं, इन्फोसिस कंपनी में थे, नारायण मूर्ति के साथ उनका नाम लिया जाता है नंदन नीलकेनी, उन्होंने अपनी आधी संपत्ति, भारतीय भाषा में बात करें तो दान देने की घोषणा की कि मैं आधी संपत्ति दान देता हूं, यानी कि सामाजिक कामों में लगाऊंगा। दो, तीसरा रीजन यह है कि अगर आप 2017 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, अनसॉल्व पेपर मेंस का, तो उसके फोर्थ पेपर को उठा करके देखें जो इंटीग्रिटी मॉरलिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड पेपर है, उसमें एक प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का B, राइट। उसमें देखिए प्रश्न क्या है, मैं आपको पढ़ देता हूं। मित्रों मैं जानबूझ करके करता हूं ताकि आपके अंदर वो दृष्टि पैदा हो सके, है ना, कैपेसिटी। मेरे जो डेली ऑडियो गाइडेंस का जो मूल उद्देश्य है वो आपके अंदर कैपेसिटी पैदा करना ही है, सूचनाएं देना नहीं है। इसलिए मैं सूचना देने के तरीके इस तरीके से रखता हूं कि आपके अंदर वो कैपेसिटी आ सके कि आप खुद फिर अपने पैरों पर चल सके। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कंपनियों को अधिक लाभदायक तथा चिर स्थायी बनाता है, विश्लेषण कीजिए, 150 शब्द, 10 नंबर का है ये। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल, एनालाइज, ये प्रश्न पूछा गया लेटेस्ट। इससे पहले भी 3-4 साल के बीच में एक प्रश्न कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से और पूछा जा चुका है। कुल मिलाकर यह कि यह जो टॉपिक है अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर 1, यह आपको समझना चाहिए। दूसरा यह कि दैनिक भास्कर की एक क्लिपिंग्स भी मैं इसी तरह के टॉपिक पर जो आई है क्लिपिंग, जो आर्टिकल लिखा गया है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरी समझ से सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर शायद ये पहला आर्टिकल कुछ इस तरह का मटेरियल होगा जो मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत कम अखबारों में इसके बारे में लिखा जाता है। तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कभी इस पर बात नहीं की थी। मित्रों जो थोड़ा सा वक्त बचा है उसमें मैं आपको 1-2 बातें जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दूं। देखिए इसमें 3 शब्द हैं, सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट का मतलब क्या है? कॉरपोरेट का मतलब समझ लीजिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, कॉरपोरेट कंपनी होती है, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, जो भी है, बड़ी कंपनियां समझ लीजिए, बड़ी कंपनियां। ये जो बड़ी कंपनियां हैं, बट नेचुरल है कि इनका अपना एक आर्थिक पक्ष है, एक आर्थिक भूमिका है हमारे देश के विकास में, राइट। ये फैक्ट्रीज लगाती हैं, इतने लोगों को रोजगार देती हैं, हमारे लिए वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। अगर वो वस्तुओं का उत्पादन न करें तो देखिए हमारे जीवन पर उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, आप कल्पना कर सकते हैं, राइट। तो हमारे समाज का, हमारी आर्थिक इंजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष ये कॉरपोरेट है, राइट। अब होता यह है कि अगर हम अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लें तो इन कॉरपोरेट का जो मूल उद्देश्य होता है वो है लाभ कमाना। अब चाहे जिस तरीके से लाभ कमाए, चलिए वो कानूनन भी लाभ कमा रही है, अच्छे तरीके से लाभ कमा रही, कोई गलत काम वो नहीं कर रही है। अब सवाल यह कि वो लाभ कमा किस लिए रही है? तो अपने लिए कमा रही है। एक कंपनी, बड़ी कंपनी बनती चली गई और बड़ी कंपनी बनती चली गई, उसने और 10 कंपनियां खोल ली, तो उससे हमारे आर्थिक गतिविधियों को गति तो मिल रही है, लेकिन समाज का एक दूसरा पक्ष भी है जो उनसे एक्सपेक्ट करता है। वो एक्सपेक्ट क्या करता है? देखिए एक्सपेक्ट ये करता है कि जब कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री लगती है तो, राइट, तो वो सामाजिक रिसोर्सेस का इस्तेमाल करती है। जैसे हवा को प्रदूषित कर रही है एक कंपनी, तो हमारे जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसको बहुत ज्यादा लैंड एरिया चाहिए तो वो वन कट रहे हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पानी भी कहीं ना कहीं जहरीला हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो वो ठीक है अब पैसा देती है, लेकिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करती है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का वो दोहन कर रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, तो उसकी अब वो पूर्ति कैसे करे, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करे, उसके बदले में वो क्या दे। तो मित्रों, इसी के तहत ये सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरी आई है कि वो जिस समाज से इतना अर्जित कर रहे हैं उसे चाहिए कि वो अपने अर्जन का, अपने लाभ का कुछ प्रतिशत समाज को लौटाए। गांधी जी ने जो उद्योगपतियों के लिए एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, ये उससे थोड़ा अलग है। ट्रस्टीशिप के तहत गांधी जी ने कहा था कि जो उद्योगपति हैं वो अपने को एक तरीके से मालिक न समझें, उसका ट्रस्टी समझें, यानी कि एक साझेदार समझें, फिर वो उनमें शोषण की भावना कम होगी। वो एक अलग बात थी, लेकिन एकदम अलग भी नहीं थी। वहां भी उन्होंने सामाजिक दायित्व की ही बात की थी। यहां सामाजिक दायित्व की बात जो कही जा रही है मित्रों, इसके दो पक्ष याद रखिए। एक तो है कि नैतिकता का पक्ष है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे जो गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने उस नैतिकता पर जोर दिया था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं और आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा लीगल पक्ष भी है, लॉ। सन 2013 में बकायदे एक कंपनी विधेयक पारित किया गया, पहली बार ऐसा 2013 में, और उस विधेयक के तहत ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अनिवार्य कर दिया गया। कंपनियां जो लाभ कमाती है, जो उनका शुद्ध लाभ होगा, नेट प्रॉफिट होगा, उस नेट प्रॉफिट का 2% वो एटलीस्ट सामाजिक कार्यों में लगाएंगे, सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में लगाएंगे 2%। लेकिन ये किन कंपनियों के लिए था, किन कंपनियों के लिए है, था नहीं, है सभी के लिए नहीं। उसमें उन्होंने कुछ दायरा रखा है कि ऐसी कंपनियां जिनका जो नेट वर्थ है, शुद्ध जो उनका मूल्य है, 500 करोड़ है, और वो, या फिर ऐसी कंपनियां जिनका सालाना कारोबार 1000 करोड़ रुपए का है, या फिर ऐसी कंपनी जो शुद्ध रूप से हर साल 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती, शुद्ध कमाई 5 करोड़ रुपए का, उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वो अपने शुद्ध लाभ का 2% सामाजिक कार्यों में लगाएं। ये कानून बन गया है। और ये जो 2% दिया गया है, जो शुद्ध लाभ की बात कही गई है, इसमें चूंकि कानून की बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 साल में जो आपकी कमाई हुई है उनका एवरेज निकाल लीजिए, क्योंकि कंपनी की कमाई हर साल एक जैसी नहीं होती है, तो एवरेज निकाल करके उसका 2% आप सामाजिक कामों के लिए लगाएं। अब इसके तहत आप 1 लगा सकते हैं, लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें ढेर सारे कामों की एक लिस्ट है, वो आप लोग देख लेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि बताई है, और इस पृष्ठभूमि में अब जो क्वेश्चन पूछा गया 2017 में, उसको हल करने की आप कोशिश कीजिए कि इससे इनफैक्ट सही मायने में, चलिए जो समाज को जो लाभ होगा वो तो होगा ही, इसमें ये पूछ कहा जा रहा है कि कंपनी को खुद में कितना लाभ होगा और कंपनी को कितना परमानेंट बनाएगा, प्रॉफिटेबल भी बनाएगा और सस्टेनेबल भी बनाएगा। इस पर अब आप लोग अपनी तरफ से विचार करें, और चाहे तो आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, जो मैं हमेशा की तरह ही आज भी आपको यह कहकर मुक्त हो जा रहा हूं कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। अब है दोस्तों मेल का चरण। सभी मेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अभिमन्यु कुमार भोजपुर बिहार से, राहुल कुमार औरंगाबाद बिहार से, जसदेव सिंह भरतपुर राजस्थान से, पूर्वी तिवारी, ललिता गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से, और प्रीति अर्चना तिर्की राउरकेला उड़ीसा से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, आज शुक्रवार है, 2 दिन का बीच में गैप है। हम पूरे एकेडमी के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, आप सबके इन दो दिनों की बहुत ही सुखद तरीके से व्यतीत होने की कामना करते हैं, और साथ ही साथ अब मैं आप सबसे दो दिनों के लिए इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।